السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسی ہیں آپ سسٹرز سب لوگ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. جی ہم لوگ انشاءاللہ تجوید کو کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جو ہمارا لاسٹ لیسنز ہوئے ان میں سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ مخارج کو کنٹینیو کریں گے. جی ہم لوگوں نے مخارج شروع کیے تھے. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو مین مخارج کی ٹائپس آتی ہیں, ایک ہے مخرج المحقق اور دوسرے ہیں مخرج المقدر. جو مخرج المحقق ہیں وہ اسپیسیفک ڈیٹرمن ہوتے ہیں, یعنی آپ اسپیسیفک پلیس سے آتے ہیں, آپ انہیں ایزلی ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ کس, یعنی پن پوائنٹ کر سکتے ہیں اس پارٹ کو, اس ایریا کو, اس مخرج کو جہاں سے کہ ساؤنڈ آ رہی ہے. اور جو مقدر ہوتے ہیں آپ انہیں پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ابن الجزری کے مطابق 17 ہمارے پاس مخارج ہیں جو کہ پانچ مین ایریاز سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی 17 مخارج ہیں جو کہ 5 مین ایریاز سے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور یہ ایریاز کون کون سے تھے؟ جی لپس ہیں اور حلق, لسان, الجوف, ون مور الخیشوم, ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس پانچ جو مین ایریاز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے الجوف, اسپیس آف ماؤتھ اینڈ تھروٹ. نمبر ٹو الحلق, تھروٹ اٹسلف. پھر نمبر تھری اللسان یعنی ٹنگ. نمبر فور الشفتان یعنی لپس. اور نمبر فائیو الخیشوم یعنی نیزل کیویٹی. ہم اس کو ساتھ ساتھ بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے, لیکن شاید میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہو کہ سب اسکالرز اگری ہیں کہ الجوف ایک مخرج مقدر ہے, یعنی آپ اسے ڈٹرمن نہیں کر سکتے, جبکہ حلق, لسان اور شفتان یہ مخرج مقدر ہیں, محقق ہیں. جب آپ ان میں سے کوئی ساؤنڈ بولتے ہیں تو آپ کو ایزیلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس پوائنٹ سے آ رہی ہے ساؤنڈ. جبکہ خیشوم کے بارے میں اسکالرس کا اختلاف پایا جاتا ہے, کچھ اسے مقدر میں کنسیڈر کرتے ہیں اور کچھ محقق میں. آج ہم سٹارٹ کریں گے الجوف, ٹھیک ہے, الجوف اور پھر حلق, لسان, شفتان اور خیشوم. یعنی ہم اس سیکوینس کے ساتھ پڑھیں گے اور ان ایریاز کے اندر 17 سب پلیسز ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سو فرسٹ مخرج کیا ہے؟ الجوف. الجوف کہتے ہیں منہ اور حلق کے خالی حصے کو, یعنی اسپیس آف ماؤتھ اینڈ تھروٹ. عربک الفابیٹس میں سے کوئی بھی الفابیٹ ایسا نہیں ہے جو کہ اس پوائنٹ اس مخرج سے آتا ہو, یعنی جو الجوف سے ہم پروناؤنس کریں, کوئی بھی ایسا الفابیٹ نہیں ہے. جبکہ جو لیٹرز ہیں الفابیٹس کی, جو لمبی آوازیں ہیں, وہ ہمارے پاس الجوف سے آتی ہیں, ٹھیک ہے, لیٹرز کی جو لینتھن ساؤنڈ ہے. اور آپ اتنا جانتے ہوں گے کہ ہم تین لیٹرز کو کھینچتے ہیں, الف کو اگر اس سے پہلے فتحہ آ رہی ہو, واو ساکن کو اگر اس سے پہلے ضمہ آ رہا ہو, یا ساکن کو اگر اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہو. یہ تین ہمارے پاس مد لیٹرز ہوتے ہیں جنہیں ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں یہ ویری کر رہا ہوتا ہے, سم ٹائم ٹو کھینچتے ہیں, سم ٹائمز مور دین ٹو کھینچتے ہیں, تو اس ڈسکشن میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن آپ کھینچتے انہی تین لیٹرز کو ہیں, الف کو کھینچتے ہیں اگر اس سے پیچھے والا لیٹر فتحہ کے ساتھ ہے, واو ساکن کو کھینچتے ہیں अगर उससे पीछे वाला लेटर दम्मा के साथ है या साकिन को खींचते हैं, अगर उससे पीछे वाला लेटर कसरा के साथ है। ये तीन मद लेटर्स अलजौफ से आते हैं। किसी स्कॉलर ने अलजौफ की बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन दी और वो कहते हैं कि जो अलजौफ है अलजौफ ये स्टार्ट होता है डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट से। और फिर जो साउंड है आपकी वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट से स्टार्ट होती है, फिर वो ट्रेवल करती है थ्रोट के खाली हिस्से में, फिर टंग के खाली हिस्से से, और बहुत स्मूथली आपकी साउंड एंड करती है हवा पर। इमाम इब्न जजरी ने भी ये बात मेंशन की अपनी पोइम के अंदर कि हुरूफ व मदिन लिल हवाई तंतही, के जो मद लेटर्स हैं लिल हवा यानी वो उनकी जो इंतहा है वो एयर के ऊपर होती है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो साउंड है ना उसका सारे के सारा जो मुंह से बाहर आना जरूरी है, यानी साउंड आपकी आराम से मद लेटर्स में बाहर की तरफ आएगी। फिर अगर हम इन तीन लेटर्स में, चूंकि हमने कहा कि तीन मद लेटर्स यानी जब हम बोलते हैं बा लेट्स से बा या बू या बी या इसी तरह से ता तू ती, तो ये जो नॉट ब इट्सेल्फ नॉट इट्सेल्फ लेकिन जो उसकी लंबी आवाज जा रही है वो कहाँ से आ रही है, जौफ से, और जौफ से वो बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट से स्टार्ट होकर ट्रेवल करती है स्पेस ऑफ थ्रोट स्पेस ऑफ माउथ और फिर एंड होता है उसका एयर के ऊपर। इसमें जो टंग की पोजिशन है वो भी इंपॉर्टेंट है तीनों मद लेटर्स के अंदर, और तीनों मद लेटर्स में टंग की पोजिशन सेम नहीं होती। ठीक है, अगर हम सबसे पहले अलिफ मदिया की बात करें, यानी जब आपके पास अलिफ है और आप उसे खींच रहे हैं और उससे पीछे वाला हर्फ आपके पास फत्था के साथ है, जैसे बा ता सा जा हा, इसके अंदर आपकी जो टंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। याद रखें कि हैवी लेटर्स इज समथिंग डिफरेंट, वो एक और क्वालिटी है जो अलजौफ के साथ फिर मिक्स होती है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपने भी ये याद रखना है कि इसमें जो टंग की पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपकी टंग होगी बॉटम पर। आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड आता है हसोईबन, आप इसको यूं नहीं पढ़ेंगे हसोईबन, यानी टंग को ऊपर नहीं लेकर जाएंगे ह ह। अगर आप इस साउंड को थोड़ा सा ध्यान दें, यानी ब या त, इस साउंड को थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसमें असल में क्या होता है कि जो साउंड है वो स्पेस से तो ट्रेवल करिए थ्रोट के, लेकिन पूरे स्पेस से गुजर कर मुंह के सारे स्पेस से गुजर कर हवा पर एंड नहीं करे, वो मुंह के अंदर ही रुक रही है। ठीक है, तो जो टंग है वो अलिफ कहते हुए आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और साउंड आपकी बाहर आनी चाहिए। अगर आपकी टंग कहीं से भी उठ जाएगी तो वो साउंड को अच्छी तरह बाहर नहीं निकलने देगी, और उसकी वजह से क्या होता है कि लाइट जो लेटर्स होते हैं ना उनमें भी आपको हैवीनेस का इफेक्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, अब आप देखें कि मिनश शैतानिर और इसी तरह से जो पीछे वर्ड था बिल्ला, इसके अलिफ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, क्यों, इसलिए कि मैंने बिल्ला बिल्ला उसको मोटा कर दिया ना, अऊजु बिललाहि ला, तो वो साउंड थोड़ी हैवी। तो इसमें आपकी टंग बिल्कुल स्ट्रेट होती है और साउंड बहुत स्मूथली बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम वाव मदिया की बात करें, तो वाव मदिया में जो आपके लिप्स हैं वो थोड़े सर्कल की तरफ जाते हैं, ठीक है, लिप्स आपके फॉरवर्ड होते हैं और सर्कल बनाते हैं। जब आपके लिप्स फॉरवर्ड होकर सर्कल बनाते हैं तो ही जो बम्मा है और वाव मदिया है उसकी साउंड मुकम्मल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बू टू, इस साउंड को कंप्लीट करने के लिए आपको दो चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। नंबर वन, आपका सर्कल मुकम्मल हो। नंबर टू, आपकी साउंड भी ओ की तरह हो, राइट? यानी आप सर्कल बना के बोलते बो, साउंड बो होती है, हो तो, यानी ये साउंड भी लिप्स के सर्कल से आ रही है, मगर साउंड आपकी अच्छी नहीं है, ऊ साउंड नहीं है, तो ये साउंड भी ऊ होनी चाहिए और लिप्स का भी आपका कंप्लीट सर्कल होना चाहिए। लिप्स को आप फॉरवर्ड करके तो लिप्स का मुकम्मल सर्कल बनाएंगे, बू टू सू जू, इस तरह से, ठीक है? लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें आपकी टंग स्ट्रेट नहीं होती, क्योंकि वाओ को मुकम्मल करने के लिए आपकी टंग ऑटोमेटिकली ना थोड़ा सा पीछे से ऊपर की तरफ जाती है। मगर याद रखें कि उस टंग को जो आवाज का एक दबाव, एक आवाज की जो साउंड की का प्रेशर आ रहा है, वो मुंह में नहीं कंट्रोल करना। अगर वो मुंह में उसको रोक लेगी तो फिर क्या होगा, मद लेटर में हैवीनेस आ जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। हर मद लेटर में तो हैवीनेस नहीं रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं बू टू सू, इस तरह करके, तो डी पार्ट आपका थोड़ा सा ऊपर जाता है, बू आप बोले, आप फील करें आपका डी पार्ट ऊपर होता है, क्योंकि वो ऊ की साउंड की रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन साउंड रिलैक्स है, सो ये यू नहीं है, सो सो या सो, सीन से जब आप बोले सो नहीं, सो सो, बिल्कुल रिलैक्स साउंड है जो के आउटवर्ड जाएगी। फिर इसी तरह से जो याम दिया है, इसके अंदर आपका जो सेंटर पार्ट ऑफ टंग है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। यामदिया में मैंने देखे बहुत दफा ना, स्टूडेंट्स जबान को यूं बहुत फैलाते हैं, जब वो जबान को फैलाते हैं ना तो जबान साइड्स के ऊपर जाकर दबने लग जाती है, साइड्स के जो साइड्स ऑफ टंग है उसके साथ, उससे साउंड बहुत यानी इफेक्टेड आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बी, ये बहुत दबी दबी साउंड है, इसके अंदर एग्जैजरेशन आ रही है, बी टी सी नहीं, बी रिलैक्स, सेंटर पार्ट ऊपर लेकर जाएं। या को मुकम्मल करने के लिए टंग की क्या पोजीशन होगी, सेंटर पार्ट ऑफ टंग आपका ऊपर जाएगा, बी टी सी डी, ठीक है, इस तरह से। ये तो एक चीज आ गई, हमने इसमें देखा कि सबसे पहले के अलजौफ क्या है, कौन सी साउंड्स आ रही हैं, फिर आपकी टंग की पोजीशंस उसके लिए क्या होंगी, ठीक है। इसके अंदर अब कुछ कॉमन एरर्स आते हैं। टंग की पोजीशन के साथ हमने एक कॉमन एरर को डिस्कस किया, आप गेस कर सकते हैं वो क्या कॉमन एरर है? जी, हम लिप्स के ऊपर बात करते हैं अभी। आपको फील हुआ कि मैंने एक कॉमन एरर को डिस्कस किया है जो टंग की पोजीशन के साथ हुआ, हेवीनेस, ठीक है, हैवीनेस ऑफ साउंड, यानी जो आपके मद लेटर्स हैं वो तीनों मद लेटर्स लाइट रिलैक्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है टंग की पोजीशन के साथ, कि अगर आपकी टंग उठ जाती है और साउंड के प्रेशर को मुंह में रोक लेगी तो वो क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएंगे। हालांकि आपको पता है कुछ लेटर्स बीच में हैवी हैं, बाकी नहीं है, और अलिफ मदिया सिर्फ हैवी होता है, बाकी कोई भी मद लेटर हैवी नहीं होता, वाओ या नहीं हैवी होते। तो इसलिए हम इंशाल्लाह इसको बाद में देखेंगे, बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे हेवीनेस को, लेकिन अभी आपने क्या याद रखना है कि टंग स्ट्रेट होगी और मद लेटर लाइट होगा। नंबर टू, समटाइम्स ऐसा होता है कि मद लेटर को ना बहुत ज्यादा दबाया जाता है, जिसकी वजह से, दबाने की वजह से क्या होता है कि वो जो साउंड है वो स्पेस ऑफ थ्रोट में से तो ट्रेवल करती है मगर वो बाहर नहीं निकल पाती, उसका जो प्रेशर होता है वो इनसाइड होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल बा लाइक बू, यानी आप उसे अंदर लेकर जा रहे हैं. बू टू, ये रिलैक्स नहीं है. बी बी साउंड घुटी घुटी और अंदर की तरफ जा रही है, हलक की तरफ उसका रुझान है. लाइक अऊज़ु बिल्लाहि ला, तो ये साउंड क्या है आपकी अंदर की तरफ जा रही है. अल्हम्दुलिल्लाहि ला, तो ये असल में ना ये दब रही है. तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें. अल्हम्दुलिल्लाह, टंग स्ट्रेट करके अपने आप को रिलैक्स करें, सारी साउंड को पुश आउट करें. तो साउंड की जो डायरेक्शन है वो हलक की तरफ भी नहीं होनी चाहिए. नंबर थ्री, इसमें ना नेजल साउंड समटाइम्स आ जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मीनाशी बों करके, बों अलिफ के अंदर हमारी नेजल साउंड आ रही है. बिस्मिल्लाह करके अलिफ में आ रही है. अमूमन ये तब होता है जब नून या मीम ये मद लेटर्स आपके आ रहे होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि इन मद लेटर्स के, यानी नून और मीम के साथ जब मद लेटर आ रहा है तो इसमें नेजल साउंड चली जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मीनाशीम, तब आप देखिए रोजीम कहते हुए अब ये क्या हुआ, साउंड आपकी जो जौफ की डेफिनेशन थी उस पर पूरी नहीं उतरी. साउंड आपकी बाहर आने की बजाय जी नाक में चलेगी. व्हाट टू डू हियर, आप पहले जी बोले, जी जैसे हम उर्दू में भी बोलते ना जी, तो ये जो जी है ये बहुत बेहतर है साउंड, यानी इसके अंदर कोई खामी कमी नहीं है. बिल्कुल वैसे बोल के फिर आप मीम के लिए लिप्स को हिट करें. जी नहीं बोलना, मीनाशीम, ठीक है, ना ही आपने मीनाशीम यू दबा के भी नहीं बोलना, ठीक है, ना दबा के बोलना है और ना ही आपने इसको नेजल कैविटी में जाने देना है. जिस तरह से एंडिंग्स होती हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब ये जो मी है ये भी नेजल ये भी जौफ से आ रहा है, ये जो या वाला या मदी आ रहा है, इससे पहले मीम है और इसके बाद नून है, ठीक है. अब इसमें हमने ये देखना है कि मीम और नून दोनों नेजल साउंड देंगे, लेकिन बीच वाला जो या है उसके अंदर नेजल साउंड नहीं आनी चाहिए. मीन नहीं, मीन मीन, ठीक है. इसी तरह से जैसे वर्ड जाते हैं यालमून, तो इस वाव के अंदर भी मून यू नहीं होना चाहिए. मून अगर साउंड आएगी तो वो नाक में जा रही है. यालमून, ठीक है. तफअलून, लू बिल्कुल रिलैक्स होगा और इसके अंदर वाव के अंदर नेजल साउंड नहीं जानी चाहिए. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम ना जब मद लेटर पढ़े हों तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारा मद लेटर बहुत रिलैक्स और आउटवर्ड होना चाहिए, ठीक है. अब लिप्स की जो पोजीशन है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. जैसे हमने टंग की पोजीशन को देखा, इसी तरह हम लिप्स की पोजीशन को देख लेते हैं. अलिफ कहते हुए आपके लिप्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है. अपवर्ड डाउनवर्ड खुलेंगे. बा टा सा, नो स्माइली, स्माइली फेस, ठीक है. लिप्स को आपने साइडवेज स्ट्रेच नहीं करना. सर्कल में मैंने आपको बताया कि आपके लिप्स सर्कल बनाते हैं, सॉरी बम्मा में वाव मदिया के अंदर सर्कल बनाते हैं. जो या मदिया है इसके अंदर आपका जो बॉटम जॉ है ना वो थोड़ा सा नीचे जाता है. कसरा की भी रिक्वायरमेंट होती है और या मदिया की भी. जैसे रब्बिल आलमी मी, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन लोअर जॉ को थोड़ा नीचे पुश करें ताकि वो अपनी साउंड मुकम्मल कर सके. मेन की तरफ साउंड ना जाए, मीन, यानी साउंड आपकी या मदिया की मुकम्मल हो. ये तो लिप्स की पोजीशंस थी. इसमें एक और इशू आता है समटाइम्स अलिफ मदिया की साउंड के अंदर. अलिफ मदिया की साउंड के अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस पाई जाती हैं. हो सकता है आपने भी इसके बारे में सुना हो कि इसको थोड़ा टिल्ट करके पढ़ते हैं या व्हाटएवर. इसके बारे में भी आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म होनी चाहिए। अलिफ अगर हम देखें तो ओके या मध्या के अंदर ना जो आपका बॉटम जॉ है, लोअर जॉ, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है। मी अगर आप देखें ना तो ये सेपरेट होकर थोड़ा बॉटम की तरफ जाता है, जैसे अर्रहमानी रहीम, तो ही कहते हुए नीचे वाला जॉ थोड़ा आपका नीचे जाता है, प्रेस होता है। समझ आया? तो अलिफ के लिए थोड़ी यानी बहुत सारी ऐसी आपको यानी साउंड सुनने में आती हैं। हाँ, जॉ के साथ नीचे वाला लिप भी होगा ना, ही, यानी वो पूरा ही जो पेयर है वो सारा ही बॉटम पर जाएगा, लेकिन स्माइल में नहीं, स्माइल में नहीं, आपने या में भी नहीं करना। अलिफ के लिए अगर हम देखें तो अलिफ मदिया में ना अगर हम पूरी लैंग्वेज की बात करें, आपको पता है जैसे ये आपके हमारी इंग्लिश के अंदर भी ना में थोड़ी वेरिएशन आ रही होती है, जैसे हम बाज इलाकों के लोग जो हैं वो बोलते हैं कैंट, और बाज एक्सेंट्स में, इंग्लिश के एक्सेंट्स में हमें पाया जाता है कांट, यानी आप ए है और उसको आ भी बोलते हैं, ए करके भी बोलते हैं। तो ये जो साउंड की वेरिएशन है, इस तरह की वेरिएशन बहुत सारी जबानों में पाई जाती है, ठीक है? तो अगर हम पूरी अरबिक लैंग्वेज का जायजा लें, पूरी अरबिक लैंग्वेज का, नॉट ओनली कुरान और द वे वी आर रीडिंग द कुरान, इसमें ये होता है कि पूरी जबान के अंदर ना अलिफ को तीन तरीकों से बोला जाता है। जो अलिफ को बोलने का तरीका है वो वेरी करते हैं, यानी तीन तरीके हैं उसको बोलने के। अलिफ को 100% फतहा के साथ बोला जाता है, इसको हम कहते हैं फतह, बिल्कुल 100% फतहा के साथ बोला जाता है, इसे हम कहते हैं फतह। अलिफ को थोड़े से मिक्सिंग ऑफ या के साथ बोला जाता है, यानी 75% अलिफ एंड 25% या आप मिक्स कर देते हैं बीच में, इसको हम कहते हैं तकलील, ता कौफ लाम या लाम, तकलील, सही। तीसरा अलिफ को पढ़ने का तरीका है इमाला। इमाला के अंदर हम उल्टा कर देते हैं, होता तो अलिफ है मगर अलिफ सिर्फ 25% पढ़ा जाता है, 75% उसमें या पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अल काफिरीन, काफिरीन, अब ये जो का है दैट्स 100% अलिफ, तो इसको हम क्या कहते हैं, फतह। अल कैफिरीन, अब ये जो आप कै करके साउंड दे रहे हैं, इट्स 25% या एंड 75% अलिफ, दैट्स तकलील। और जो थर्ड तरीका है वो क्या है, अल केफिरीन, ये जो केफिरीन हो गया दैट्स 75% या एंड 25% अलिफ, दैट्स इमाला। कुराने पाक में एक वर्ड में इमाला है, आप में से किसी को पता है उस वर्ड के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड जी। ये जो वर्ड है ना मजरे, हाँ, इसके अंदर इमाला हमारे पास आता है, बिस्मिल्लाही मजरे हा व मुरसाहा। मैं आपको आया नंबर चेक करके बताती हूँ। ये जो वर्ड है इसमें हमारे पास इमाला से ये पढ़ा जाता है। सो एक सिर्फ वाहिद ये अलिफ है, दैट्स आयत नंबर 41 सूरत हुद, ठीक है? आयत 41 है सूरत हुद, इसके अंदर ये जो वर्ड आ रहे हैं ना मज रे हा, ये आप इमाला से पढ़ते हैं, दैट्स अलिफ एक्चुअली, मज रो हा। वर्ड का ओरिजिन क्या है, मज रो हा, ये अलिफ है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है, मजरे हा, आप इसे माला से पढ़ते हैं। बाकी जो तरीका हम पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, हफ्सन आसम इन तरीके शातबिया, इसमें कहीं पर भी ना तकलील है ना इमाला है। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ फतह है जी। नाम उनके थे फतह, तकलील एंड इमाला। सो ओनली वन प्लेस जो कि आपके पास स्पेशल वर्ड है जिस पे आप इमाला करते हैं, बाकी जहां कहीं अलिफ आएगा यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी स्ट्रेट, 100% अलिफ फतह होना चाहिए। सही, ओके, बात समझ में आ गई यहां तक आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इसके बाद अब हमारे पास जो सेकंड मखरज है वो है अल हलक। अल हलक के अंदर हमारे पास तीन सब मखारिज हैं, तीन मखरज हैं। नंबर वन अक्सल हलक, नंबर टू वस्तुल हलक, नंबर थ्री अदनल हलक। ठीक है, हलक के तीन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अक्सा कहते हैं दूर के हिस्से को, तो बॉटम ऑफ थ्रोट जो है वो हिस्सा जो कि आपका मुंह से दूर है और सीने के पास है, इसको हम कहते हैं अक्सा, अक्सल हलक। वसत कहते हैं मिडिल को, दरमियान वाले हिस्से को, और अदना कहते हैं बिल्कुल मुंह के जो करीब हिस्सा होता है उसको, अदनल हलक। अच्छा, एक पॉइंट मैं मिस कर गई हूँ, हरूफुल मत से रिलेटेड मेरे जहन में अभी आया है। ये जो हरूफुल मद है ना, इनको हम कहते हैं हरूफुल हवाइया। ठीक है, ये आप लिख लीजिए हरूफुल हवाइया, क्योंकि इनकी इंतहा हवा पे होती है, और इवन ये मुंह के भी खाली हिस्से से आ रहे हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट एयर से ही आ रहे हैं, मुंह के अंदर भी कोई पार्ट किसी पार्ट से टच नहीं होता, ना टंग टच होती है, ना हलक टच होता है, कहीं से भी स्क्वीज होता है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं हरूफुल हवाइया। हलक से हमारे पास सिक्स लेटर्स आते हैं, हर पार्ट से टू लेटर्स। ठीक है, यानी अक्सल हलक से भी दो हरूफ आते हैं, वसतुल हलक से भी दो आते हैं, अदनल हलक से भी दो आते हैं, और इन सिक्स लेटर्स को हम कहते हैं हरूफुल हलकिया। ठीक है, ये जो सिक्स लेटर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, हरूफुल हलकिया, यानी हलक से आने वाले हरूफ। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अक्सल हलक। अल्हम्दुलिल्लाह, अब चूंकि हम मखारिज, मुहक्कक मखारिज डिस्कस करने लगे हैं, जिन्हें आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, जिन्हें आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है, और दूसरा ये कि आपको वीकली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करना है। सही, अगर आप इसको यानी फॉर ग्रांटेड लेंगे, या आप कहेंगे कि ओके ठीक है नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए बर्डन होता जाएगा। अगर आप एक मखरज आज सीख रहे हैं, दो तीन लेटर्स आज आप सीख रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि नेक्स्ट वीक में इतनी प्रैक्टिस हो कि आपके ये मखरज जो लेटर्स हैं जो आपने सीखे वो परफेक्शन के बहुत करीब करीब पहुंच जाएं। ठीक है, तो चूंकि हम इन्हें डिटरमिन कर सकते हैं, इसलिए यानी इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा फायदा देगी। ठीक है, तो आपने वीकली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है. 7 दिन है हमारे पास, और हम जितने भी लेटर्स करें हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, वो आप ना एक वीक में जरूर उनको किसी एक मकाम के ऊपर लेकर जाएं. डिफरेंट होने चाहिए आपकी पहले वाली रीडिंग से एटलीस्ट. दूसरा ये कि हम लेटर को प्रैक्टिस कैसे करेंगे. जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमें कोई भी लेटर, कोई भी जो लेटर आ रहा है, वो हमें 4 फॉर्म्स में मिलता है. नंबर 1 साकिन हो सकता है, वो फतहा के साथ हो सकता है, वो कसरा के साथ हो सकता है, वो दम्मा के साथ हो सकता है. ठीक है, यानी इन डिफरेंट फॉर्म्स में हमें एक हर्फ मिलता है. साकिन भी है, फतहा है, या कसरा है, या दम्मा है. तो अगर आप सिर्फ लेटर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप करें और आप लेटर को सिर्फ हा हा करके बोलें, तो वो सिर्फ आपका फतहा स्ट्रांग होगा. यही वजह होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फतहा स्ट्रांग हो रहा होता है लेकिन कसरा और दम्मा बहुत वीक आता है, या साकिन की साउंड वो अचीव नहीं कर पाते. इसलिए हम जब लेटर की प्रैक्टिस करेंगे तो हम सारी साउंड्स को इकट्ठा करेंगे, सारी साउंड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी लेटर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे साकिन कर दें. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी हम अकसल हलक से शुरू करेंगे तो हम हा प्रैक्टिस करेंगे, तो हा को आप साकिन कर दें. और अरबिक का एक रूल है कि अगर आप साकिन लेटर बोलना चाहते हैं तो आप साकिन से पहले हेल्पर हमजा लगा लें. ठीक है, आप उससे पहले हेल्पर हमजा लगा लें. तो हम आ लगा देते हैं पहले और हा को साकिन कर देते हैं, आ. इसी तरह से अब हम इसको ना हरकात के साथ प्रैक्टिस करने के लिए साकिन और हरा का मिक्स कर देते हैं, जिसके लिए हम तशदीद का वर्ड यूज करते हैं. अब इसको मुशद्दद करके साकिन पहले बोलें फिर आप हरा का बोलें. यानी आपने पहले साकिन बोला तो साकिन की प्रैक्टिस होगी, अब आप हाँ बोल रहे हैं तो आपकी फतहा की प्रैक्टिस होगी. और दोनों मिक्स होके आपकी तशदीद की प्रैक्टिस हो रही है. राइट, इसी तरह से फिर साकिन करें और कसरा लगा दें. ठीक है, फिर साकिन करके बम्मा लगा दें, आहू. इस तरह से तो ये जो है, ये कॉम्बिनेशन आपकी चारों जो यानी पॉसिबल यानी फॉर्मेशंस हैं लेटर की, उसके साथ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इस तरह से करने से आपकी उन चारों हालतों की प्रैक्टिस हो जाएगी जिसमें कि एक लेटर आ सकता है. तो अब हम देखते हैं अक्सल हलक को. हाँ जी, तशदीद लगा दें, शद्दा लगा दें. हरूफुल हवाइया जो है वो मद लेटर्स को कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा ना, अलजाउब से जो लेटर्स आते हैं वो. और जो अभी हम पढ़े हैं ये हलकिया है जी. तो अक्सल हलक से हमारे पास 2 लेटर्स आते हैं, एक है हा, दूसरा है हमजा. अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम एक ही मखरज से आने वाले मुख्तलिफ लेटर्स पढ़े होते ना, तो कोई एक आध लेटर बीच में थोड़ा आसान हो जाता है. जब वो आसान लेटर आ जाता है ना, तो आप उसको हिट करके दूसरे लेटर के मखरज को फील कर सकते हैं. अब अगर हम इन 2 लेटर्स में देखें, हमजा एंड हा में, तो हमजा कंपैरेटिवली हा के आसान हर्फ है. हमजा जो है वो आसान लेटर है बनिस्बत हा के, या आप ये कह सकते हैं कि इसके मखरज को ज्यादा आसानी से चेक किया जा सकता है. जो हमजा की साउंड है वो जर्क की साउंड है. ठीक है, यानी जब ये साकिन हालत में आता है तो आप झटका लगा के इसको बोलते हैं. ये एक्चुअली हमजा की अपनी आवाज है. ठीक है, जब आप इसके मखरज के ऊपर साकिन साउंड बोलते हैं तो ये साउंड आती ही ऐसी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब मैंने आपको एक और बात बताई थी ना कि आपने हेल्पर हमजा लगाना है. हमजा को प्रैक्टिस करते हुए आपने हेल्पर हमजा नहीं लगाना, क्योंकि ये साउंड बन जाती है ना आ, तो तो ये साउंड जो है वो लैंग्वेज में नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए हम इसको किसी और लेटर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, लाइक बा से प्रैक्टिस कर लेते हैं. इट्स ये जो केस है इट्स ओनली विद द हमजा, हमजा के साथ आप हेल्पर हमजा नहीं लगाएंगे. तो हमजा को हम बा के साथ प्रैक्टिस करते हैं, सही? यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर इसको साकिन करें हैं तो आपकी क्या साउंड आएगी, एक झटके की सी आवाज आएगी बा. अब जब आप झटका लगा रहे हैं ना तो थोड़ा सा अपनी सेंसेशंस को स्ट्रांग करें, आप फील करें कि हलक का कौन सा हिस्सा स्क्वीज हो रहा है बा, और आपको बहुत आसानी से फील होगा. हो सकता है हिट करते हुए ना फील हो. आप साउंड जब खत्म करते हैं आप उसे रिलैक्स करते हैं, जब आप रिलैक्स करते हैं तो आपको वो एरिया फील होगा. आप सब करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या फील हो रहा है यानी बा कहते हुए. जी अब जब आप हमजा की हरका बोलेंगे तो आपने यही एरिया इस्तेमाल करना है, ब आ आ ब ई ब उ, ये हमजा की साउंड होगी, सही है? आ ई उ. अगर हम हमजा के डिफरेंट कॉमन एरर्स को देखें तो हमजा की जो साउंड है इसके बारे में ना एक स्कॉलर लिखते हैं कि यानी उन्होंने अपनी मंजूमा की लाइंस के अंदर ये लिखा कि हमजा की आवाज बात स्टूडेंट्स इस तरह से बोलते हैं कि आपका दिल चाहता है कि आप उठ के भाग जाएं. तो यानी इस तरह की वो साउंड होती है. तो असल में होता ये है कि हमजा की वो साउंड जो टीचर को थोड़ा भागने के ऊपर मजबूर करे वो बहुत ज्यादा दब रही होती है. लाइक मुझे खुद ये एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे स्टूडेंट्स बस स्टूडेंट्स पढ़ते तो हमजा को ना बहुत दबा के पढ़ते हैं, लाइक ये जो साउंड है अब ये इतनी शार्प होती है कि लिटरली लाइक योर आपके जो कान है डोंट वॉन्ट टू हियर दिस, ठीक है? तो बिल्कुल रिलैक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना तजवीद में आप पढ़ते हुए बहुत रिलैक्स होंगे, तकल्लुफ नहीं, किसी तरह की एग्जैजरेशन नहीं, ये साउंड आपकी आनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स साउंड है, मखरज से है मगर उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, रिलैक्स साउंड है, आऊज़ू, ठीक? ओके, एक तो इसके अंदर ये एरर हो गया, ये समटाइम्स बहुत घुटी घुटी बहुत दबी हुई आवाज होती है. कुछ स्टूडेंट्स को साकिन आवाज बोलने में भी प्रॉब्लम होता है और वो या बोलने की बजाय अपना जो डीप पार्ट ऑफ टंग है वो समवेयर रूफ पे हिट करते हैं और साउंड आती है, जैसे यू मीन ओन, इसकी आवाज आती है युक मीन ओन. अब एक्चुअली मैं युक खुद कर रही हूं, यानी युक इसलिए कर रही हूं ताकि आपको सेंस आए कि ये यहां हिट हो जाता है. असल आवाज क्या आती है, युक मीन ओन, युक मीन ओन. अब ये इतना डिफिकल्ट होता है कि आप युक और यू के अंदर डिफरेंस कर सकें कि क्या हलक के उस हिस्से को हिट हुआ या टंग हिट हुई. जब टंग हिट होती है तो भी ये झटका ही आ रहा है, युक मीन ओन, लेकिन ये साउंड काफ की है, सही? ये साउंड यानी मैंने फील किया. सो आप पे से हर एक अपना चेक करे कि आपकी टंग हिट नहीं होनी चाहिए, यानी युक ये जो काफ वाली आवाज है ना ये वाला पोर्शन हिट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट आपने जो है वो हलक में जाना है, या यु, ठीक है? ये साउंड आपकी आनी चाहिए. समटाइम्स ऐसा हो जाता. फिर इसी तरह से जो हमजा की आवाज है बाजुकात ना वो यानी तहकीक के साथ नहीं आती, यानी मुहक्कक आवाज नहीं होती. और ऐसा मैंने ऐसा ज्यादा तब देखा जब वो मद लेटर के बाद आ रहा है, नहीं हमजा जो है जब वो मद लेटर के बाद आ रहा है तो शायद वो मद लेटर में आप इतने इन्वॉल्व होते हैं कि आपका हमजा बाद वाला वीक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल नहीं मुझे बात समझ नहीं आई, प्लीज दोबारा से लिखिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड है असमा, तो अब ये जो हमजा है ना, जैसे मीनस समा ई, ये जो हमजा है ये समटाइम्स वीक हो जाता है. इसकी साउंड कैसे आती है, असमाई, यानी असमाई. अब आप देखें कि ये मुहक्कक नहीं आया, ये क्लियर मखरज से नहीं आया. मीनस समाई नहीं, कैसे होना चाहिए, मीनस समाई, मीनस समाई, असमा. ठीक है, तो ये जो हमजा की साउंड है ये अमूमन जैसे सुईन, तो ये अब साउंड अगर वीक हो जाए तो ये कैसे आती है, सुईन, सुईन. आपका हमजा कहीं जौफ में ही मिक्स हो गया, हमजा मखरज से नहीं आया, सुईन. तो ये जो है ना, ये एक एरर जो है हमजा में देखने में आता है. तो जहां कहीं आपका हमजा आए उसको क्लियर करें, उसके मखरज पर हिट करें, ज्यादा नहीं दबाना लेकिन आपने उसको मखरज के ऊपर हिट करना है. जी बिल्कुल, जैसे वर्ड है अलमलाइका, तो ईका मखरज पर हिट करके आगे चलें. डोंट से अलमलाइका, मलाइका, ये ऐसे मिक्स हो जाता है. तो शायद हम उर्दू में इस तरह बोलने के आदि आदि होते ना, मलाइका मलाइका, तो वो हमजा क्लियर नहीं होता तो शायद उसकी वजह से भी ये इफेक्ट आता है. लेकिन मैंने देखा है कि मद लेटर के बाद हमजा को थोड़ी तवज्जो की जरूरत होती है. समटाइम्स अगर आप उसे तवज्जो नहीं देते तो वो आपका हमजा क्लियर नहीं आता. अब हम आ जाते हैं हा के ऊपर. ये जो हा की साउंड है ये एक्चुअली उर्दू के हा से थोड़ी डिफरेंट है. अगर ये कहा जाए कि अरबिक में जो हा है, ये वाला हा, ये ना तो इंग्लिश में है ना उर्दू में है, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश का हा यानी एच साउंड और उर्दू का हा थोड़ा सा इससे डिफरेंट है. यही वजह है कि हमें इसको परफेक्ट करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम आता है. इंग्लिश का हा में जैसे ही या हाउस आप बोलते हैं एच फॉर हाउस, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना अरबिक का है. और उर्दू में भी आपका हा का यही इशू है. वो जो हा है जो बाकी लैंग्वेज में हम बोलते हैं, ये ऐसा होता है कि ये अक्सल हलक से थोड़ा ऊपर से आ रहा होता है और ये बिल्कुल बॉटम पर जाना चाहिए जो अरबिक हा है. इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जैसे मैंने आपको बताया कि हमजा जो है वो जर्क वाला है, तो आप जब बोलें जैसे या यू, तो आप उस पार्ट को फील करें, बा बा, वो जो हिट हुआ है ना पार्ट उसको फील करें. अब आपने बा उसी पार्ट को यूज करके बा हा बोलना है, यानी बा जहां पर आप गए हैं वहां पर असल में आपने उसको दबा लिया ना, तो साउंड के अंदर तो डिफरेंस है क्योंकि लेटर डिफरेंट है, लेकिन एरिया वही आप यूज करेंगे बा. यहां पर ये जो मखरज हिट हुआ है अगर आप फील करें तो अक्सल हलक, ये पाइप है एक, उसका जो सबसे बॉटम वाला पार्ट है वो एक दूसरे के बहुत करीब आया बा कहते हुए, और जब आप बोलेंगे बा तो यही वाला पार्ट आपको वाइब्रेट करता हुआ फील होना चाहिए, बा यही पार्ट से आवाज आएगी, वो सेम पार्ट से आपकी आवाज आएगी. तो अब हम हा के साथ हमजा को प्रैक्टिस करेंगे, हमजा के साथ हा को. तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आ फिर इसको मुशद्दत करें, आ हा, तो मेक श्योर कि यू नहीं होना चाहिए, आ हा नहीं, यानी आ अपनी जगह स्ट्रांग, हा अपनी जगह स्ट्रांग, आ ही, और इस हा के अंदर अगर हम डिफरेंट कॉमन एरर्स देखें तो सबसे पहले तो ये कि इसको इसके मखरज से बोलना ही थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी मखरज पे नहीं जाता. फिर ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपको पता है अरबिक में दो हा है, एक हा है एक हा है, और हा जो है वो जरा डिफरेंट है, तो हम ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं फिर होता यह है कि हमारा हा जो है वो भी हा बन जाता है. तो मैंने देखा बहुत दफा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हिर रहमान, तो वो हिर रहमान नहीं है, वो हिर रहमान है, वो बोला हा और रहमान का हा, ये दोनों डिफरेंट है, तो चूंकि हम हा की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करते हैं तो हमारा हा भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके मखरज को चेक करना और इसके मखरज से आवाज निकालना, ये एक बड़ा मारिका होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे सकती हूँ जो कि मेजॉरिटी लोगों को फायदा दे जाती है। इसमें यह है कि आप जैसे ना एक गहरा सांस लें, यानी आप अगर गहरा सांस लेते हैं और अपने सांस को थोड़ी देर जो है वो आप चेस्ट में रखें, और फिर आपने कोई लेटर नहीं बोलना, आपने सिर्फ उस सांस को आवाज के साथ बाहर निकालना है, ठीक है। यानी आप सांस ले रहे हैं और आपने हवा को जो आपने इनहेल की है उस एयर को आपने चेस्ट में रखा और फिर आपने उसको रिलीज किया साउंड के साथ। तो ये कैसी साउंड आती है, यूं, ये जो साउंड है ना, दैट्स अ हा, दैट्स अ परफेक्ट हा। तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करें तो आई होप कि आपका हा जो है वो इससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपने कॉन्शियस नहीं होना कि आपने कोई लेटर बोलना है। जब आपके माइंड में होता है ना लेटर बोलना है तो वो फिर हा निकल रहा होता है, यानी वो फिर आप बेशक डीप ब्रेथ लें लेकिन आपको चूंकि माइंड उस तरफ है कि नहीं आपने हा बोलना है, तो वो फिर आप रिलैक्स होकर साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। ये जो साउंड है, ठीक है, ये साउंड एक्चुअली हा की है। तो हा ही हो, इस हा के अंदर हम एयर ब्लो करते हैं बाहर की तरफ ना। देखिए आप, आपकी जो हवा है वो बाहर आ रही है। आ हा ही हो, इसके अंदर दूसरा कॉमन एरर ये होता है कि जब आप इसको बोल रहे हैं तो ये हा में एयर नहीं आ रही होती। लाइक जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तो आप इसको फील करें बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नाउ द हा इज वेरी वेरी वीक, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे, बिस्मिल्लाही, पहले इसको बोले ही स्ट्रांग, फिर इसको रॉ के साथ मिलाएं, हिर्रहमानिर्रहीम। समटाइम्स इस हा के साथ अलिफ आए तो वो भी मोटा हो जाता है, लाइक हा यू करके, नहीं क्योंकि इसकी आवाज अपनी एक स्ट्रांग साउंड दे रही है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है अलिफ भी बाद में आ रहा है जो वो भी मोटा हो गया। हा नहीं, हा तुम, हा हा, रिलैक्स करके, ठीक है। यानी उसको हैवी ना करें हा को, यानी इटसेल्फ हा को भी हैवी ना करें। हा आपका हा लाइट है, सिर्फ इसकी आवाज में ये साउंड होनी चाहिए, साउंड इसकी स्ट्रांग हो मखरज से आए, हा तुम, सही जी। तो ये है इसमें आई थिंक इस तरह बस यही चीजें हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे हा को और हमजा को बोलते हुए। और अगर कोई आपका सवाल है तो कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा रीडिंग के ऊपर आ जाते हैं। मेरे ख्याल है अभी हमने कोई स्पेसिफिक सूरा नहीं प्रैक्टिस करना शुरू की ना, तो हम 30th जुज को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग अपने अपने हैंड रेज कर कीजिए जिन्होंने सुनाना है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको कुछ आयतें पढ़ देती हूँ जो कि आप पढ़ लें। हाँ ओके, मैं टिप रिपीट कर देती हूँ। टिप ये थी, ओके, जो मैंने आपको टिप बताई थी हा को प्रैक्टिस करने की, वो मैंने ये बताई थी कि आप एक डीप ब्रेथ लें, ठीक है, और फिर उस जो आप इनहेल कर रहे हैं उस सांस को फॉर अ सेकेंड और टू आप अपनी चेस्ट में रोकें, और फिर उसके बाद ना उस सांस को आपने बाहर आवाज के साथ निकालना है, ठीक है, दिस वे। ये जो ह साउंड आ रही है ना, दैट्स अ हा एक्चुअली, हा हा, यानी ये साउंड है, सही। तो हम सूरतुन नबा से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आया 1-9 पढ़ती हूँ, फिर इंशाल्लाह जो भी आप में से पढ़ सका तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. جی فرسٹ سسٹر آپ انہی آیات کو پڑھیے.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہم دیکھیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی آمین ویاکم بارک اللہ فیکم. اوکے سو میں انشاءاللہ فوکسڈ رہوں گی کہ میں صرف مد لیٹرز کو اور حمزہ اور ہا کو بھی چیک کروں. माशाल्लाह आपके मद लेटर्स अच्छे हैं. एक जगह के ऊपर मुझे आपका हमजा थोड़ा हैवी फील हुआ, व्हिच इज द वर्ड अलम नजअलिल अरुदा. तो यहाँ पे ये साउंड नजअलिल अरुदा अ साउंड आ रही थी, तो मेक श्योर अ नहीं आ, रॉ हैवी होगा आ लाइट होगा. अलम नजअलिल अ अरुदा मिहादा, और थोड़ा सा हा को ना आपने स्ट्रांग रखना है. और हुम फीहि, मेक श्योर के फीहि इसकी साउंड अच्छे आए और फिर आप आगे चलें. मिहादा, ठीक है इंशाल्लाह. एक और चीज के जब आपने पढ़ा ना नाउ मखुम, तो इसमें भी ये थोड़ी नाउ मखुम साउंड आई, यानी नाउ मखुम नहीं नाउ नाउ मखुम सुबाता. जज़ाकिल्लाह खैर. जी नेक्स्ट स्टेप आप पढ़िए.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. تلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
جي آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي. اس پہ نا آپ نے جیسے میں ابھی الف کے کامن ایررز بتا رہی تھی نا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے نا الف کو ٹیڑھا نہیں کرنا, تو یہ آپ نے بالکل اس کو نا اسٹریٹ رکھنا ہے. تو اس میں اعوذ, تو حمزہ کو آپ نے بالکل اسٹریٹ کر کے پڑھنا ہے. حمزہ کی ساؤنڈ بھی آپ نے نا یعنی اے کی طرف نہیں لے کر جانی, اعوذ نہیں, اعوذ باللہ. اور اللہ کے لام کو بھی اسٹریٹ رکھیں, باللہ من الشیطان الرجیم. پھر مجھے کافی جگہ کے اوپر یہی ساؤنڈ آ رہی تھی, جیسے وَخُلَقُنَاكُمْ نہیں, وَخُلَقُنَاكُمْ. آپ نے ٹنگ کو سائڈ وے پریشر نہیں دینا, نا نا بالکل ریلیکس, وَخُلَقُنَاكُمْ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی جو ساؤنڈ ہے یہ بالکل اسٹریٹ آئے گی. پھر اسی طرح سے جو ہا ہے وہ بھی آپ کا ہا میں جا رہا ہے, آپ نے اس ویک میں ہا کو پریکٹس کرنا ہے. اٹ ساؤنڈ لائک ہم فی ہی نہیں, ہم فی ہی مہادا نہیں, میہادا. تو ہا کو ابھی نا آپ اس ایکسرسائز کے ساتھ انشاءاللہ پریکٹس کیجئے. جی انشاءاللہ آج کے لیے ہم یہیں تک رکھتے, نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.